ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 आज हम श्रीमद् भागवतम का तीसरा सातवां स्कंद और तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 14 अमर बनने की हिरण्यकश्यप की योजना के अनुसार इति विज्ञापितः दैवैः भगवान आत्मभूः नृप परितः भृगु दक्ष आद्यैः ययौ दैत्य ईश्वर आश्रमम् इति विज्ञापितो दैव भगवान आत्मनुरूपः परितो भृगुदक्षादै ययौ दैत्याश्वराश्रमम् इति विज्ञापितो दैवैः भगवान आत्मनुरूपः परितो
भृगुदक्षादै
ययौ दैत्येश्वराश्वरम् इति विज्ञापितो दैवैः भगवान् आत्मनुरूपः परितो भृगुदक्षादै ययौ दैत्येश्वराश्रमम् इति इस प्रकार विज्ञापितः सुचित दैवैः समस्त देवताओं द्वारा भगवान अत्यंत शक्तिशाली आत्मभूः कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी नृप हे राजा परितः गिरा हुआ भृगु भृगु द्वारा दक्ष दक्ष से आद्यैः तथा अन्यों से ययौ गए दैत्य ईश्वर दैत्यों के राजा हिरण्यकशिपु के आश्रमम् तपस्या स्थल पर। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी प्रतिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा हे राजा देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगु दक्ष तथा अन्य महर्षियों के साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी प्रतीक्षा में थे कि हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हो ले तो वे वहां जाकर उसकी इच्छा अनुसार उसे वर दे सकें। अब वे समस्त देवताओं तथा बड़े बड़े साधु पुरुषों को साथ लेकर उसे इच्छित वर देने गए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरणारघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणारविता श्रीशाकान्तांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
इति विज्ञापितो दैवे ही भगवान आत्मा दुर्ग्रुप परितो दुदुदक्षादेहि ययो दैत्याश्वरश्रम। हे राजा, देवताओं द्वारा इस प्रकार सूचित किए जाने पर अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भृगुदक्ष तथा अन्य महर्षियों को साथ लेकर तुरंत उस स्थान के लिए चल पड़े जहाँ हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। ये शब्द आश्रमम यहाँ उपयोग किया गया है। आश्रम कोई श्रम का स्थान नहीं, जहां श्रम नहीं किया जाता लेकिन ऐसी प्रवृत्ति की जाती है जो आश्रम कहलाने के लिए योग्य है। आश्रमम जहां श्रम नहीं है लेकिन ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जिसे आश्रम बनता है। कोई विशिष्ट हेतु के लिए जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य को पूरा करे, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उसको पूरा करने के लिए ही तो आश्रम बनाए गए। आपको पता होगा कि ऐसी प्रवृत्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली होनी चाहिए। यदि हम किसी भी संस्कार में किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम में रहते हैं फिर भी हमारे सूचित किए गए कर्मों का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता न हो तो सिर्फ श्रम कहलाता है। श्रम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही तो जीवन होना चाहिए, ऐसा श्रीमद् भागवत का मत। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग वर्णाश्रम विभाग के अनुसार जो अपना सूचित किया गया कर्म जो करता है तो वो करने की वजह या करने का लक्ष्य करने का हेतु क्या है। संसिद्धि परितोषण भगवान की प्रसन्नता भगवान का संतोष के लिए करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे सारे किए किए कराए हुए सब कर्म की विफलता वहां होती है जहां हम भगवान की प्रसन्नता या उनका कोई आकर्षण नहीं जमा पाए। तपुंबी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग धर्म से स्वनुतिष्ठ से संसिद्धि हरितोषण सो धर्म स्वनुतिष्ठा पुंस विश्वक्षेण कथा सुय नोत्पादय यदि यदि श्रम एव ही केवल। ये दो श्लोक इतने पूरक हैं जो यहाँ हिरण्यकशिपु के चरित्र द्वारा वो भी आश्रम में जाता है लेकिन देखो उसका लक्ष्य क्या है। जहां रहने का स्थल होता है उसे आश्रम कहते हैं लेकिन वहां किसके लिए श्रम किया जाता है वही देखना होता है। श्रम एव ही केवल भगवान के प्रत्येक हम कोई आकर्षण नहीं जमा पाए हमारे करे कराए कर्मों के अनुसार, तो सिर्फ वो गधे का श्रम कहलाता है। गधा भी श्रम करता है, मनुष्य भी श्रम करता है। जो मायावादी लोग हैं, जो वो कहते हैं कि क्या आपको मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पत्थर की पूजा करना या उसके लिए सेवा करना, ये क्या बड़ा धर्म है क्या? आपकी फैक्ट्री ही बड़ा मंदिर है और वहां श्रम करो, मेहनत की रोटी खाओ, पसीने की कमाई खाओ। ऐसी बुद्धि देते हैं, लक्ष्य की बात ही नहीं करते मायावादी लोग। मायावादी कहते हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है इस जीवन में हम जो जो हम धारणा करते हैं, मन के धर्म होते हैं, जो जतो मत ततो पथ, जो आपका मत है वही आपका पथ है, वो मार्ग पर चलो, लेकिन गधे की तरह काम करो और सुख भोग में आनंद बिताओ। जो काम नहीं करता वो गरीब का गरीब रहता है। काम करने से ही कर्मण्येवाहि संसिद्धि, कर्म से ही, अरे कर्म कर्मणि श्रम एव ही जयते, सिर्फ जय किसकी होती है? जो श्रम करता है उसकी। ऐसे ऐसे नारे बताते हैं, और जहां भागवत तो कुछ उल्टा ही कहता है, अरे ऐसे व्यर्थ श्रम करने के लिए आश्रम नहीं बनाया जाता। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ब्रह्मचार्य श्रम, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत सिर्फ भगवान की प्रीति के लिए हर एक आश्रम में की जाती है, तब वह श्रम नहीं, सिर्फ भगवत प्राप्ति होती है। जो श्रम करता है उसे पसीना निकलता है और कुछ नहीं निकलता। जो श्रम करता है सिर्फ पसीना निकलता है, और वो भी उधार। उधार क्यों? श्रम करने की शक्ति कहां से लाता है? वो भी उसको देखने की कोई दृष्टि नहीं है। भगवान की शक्ति उधार लेता है, और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए श्रम करता है पसीने, और बाद में अहंकार से कहता है हम पसीने की कमाई खा, भगवान के पास हम मांगते नहीं, अरे भीख मांगना धंधा बेकार है। आप दान लेने जाओ भगवान की प्रीति के लिए, तो वो आपको भिखारी की तरह समझेंगे, अरे भीख मंगे आ गए देखो, अरे है ही भीख मंगे, लेकिन भगवान की प्रीति के भीख मंगे, तेरी दौलत के नहीं, तो पसीने की कमाई देता है क्या? तेरे पसीने, तू उधार लाया, हम तो झाटकते उसे, कहां से तेरी शक्ति आई बता तो सही, तू रूढ़ी है, दूसरे के शक्ति पर तू नाच रहा है, तेरी तो कुछ है ही नहीं, आया था खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ, सही ना? तो देखो अहंकार मायावादी, धार्मिक होते हुए भी कम ऐसा धर्म की रक्षा करना कोई हितावह क्या? भागवत कहते हैं लात मारकर निकाल दो ऐसे धर्मों को, धर्म प्रोचित करी तो वत्र। तो यहां हिरण्यकशिपु देखो कितना दुष्ट है, सारे देवताओं जो भगवान की नीति के अनुसार गए ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए तत्पर है, ये तो देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि ये दुष्ट है, ये भगवान का धर्म पालने वाला नहीं, ये यदि ब्रह्मा जी का स्थान ले लेगा तो सब गया काम से, उसको कहीं ना कहीं से हमें परास्त करना पड़ेगा। देवताओं को भी चिंता होती है, ऐसे दुष्ट भी पके हैं ये मायावादी लोग, तो बहुत तुच्छ, लेकिन उस पर डांट देकर ही काम कर सकते हैं। जो कोई ठीक ढंग से शास्त्र का जो निस्तार है, निचोड़ है, उसके अनुसार नहीं बोलता है तो उसको डांटना, वो क्रोधी स्वभाव काम में आ जाएगा, भगवान की भक्ति हो जाएगी क्रोध द्वारा, वो करने में कोई पाप नहीं। तो देवताओं को लेकर और अन्य ऋषि भृगु जैसे ऋषियों को लेकर, क्योंकि ये ऋषि मुनि ब्राह्मण कक्षा के, देवताओं राजवी कक्षा के, राजसिक इंद्र जैसे, इन लोगों को भी लेकर जाना पड़ता है। परमेष्ठी यानी कि ब्रह्मा जी का सर्वोच्च स्थान हर एक जीवों में, उनकी ताकत उनकी तपश्चर्या के बल पर है। वो भगवान द्वारा प्रदत्त पहले से ही दी गई शिक्षा के अनुसार चलते हैं, अपनी कोई मति नहीं लगाते। इसीलिए भगवान का सारी सृष्टि का सृजन करने में वो साथ देते हैं, सारी सृष्टि का, और यथावत भगवान जैसे चाहते हैं वैसे ही करते हैं, वो ब्रह्मा जी कभी उल्लंघन नहीं करते। उनकी तपश्चर्या का ये फल, जबकि ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का स्थान लेना चाहता है, आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटर, वो समझ रहा है कि ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी आयुष्य है, और ये देखो एक छोटे बालक ध्रुव को भी दे दी है ऐसी आयुष्य, ब्रह्मा जी की आयुष्य दे दी, तो हम भी क्यों ना ले। लेकिन भगवान की प्रसन्नता की कोई बात नहीं, भगवान को उसका द्वेष ही है। आप जानते हो हिरण्यकशिपु अध्यात्मवादी था, जब उसका भैया हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा तो उसकी पत्नी को हिरण्यकशिपु आश्वासन दे रहा है, ए मत रो, ये तो शरीर गया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आत्मा अमर है, इसीलिए रोना धोना आवश्यक नहीं है। हाँ, लेकिन तेरे सुख के लिए मैं इतना करूंगा, मेरे भैया को जिसने मारा है ना वो विष्णु मेरा दुश्मन है, इसलिए मैं उसको मारूंगा, तू फिक्र मत। आत्मा के बारे में जानकारी होते हुए भी भगवान के दुष्ट बनते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले असुर भी दुष्ट होते हैं जब भगवान का अनादर करते हैं। रावण भी तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, वो ब्रह्म को जानता होगा लेकिन पर ब्रह्म को नहीं जानता, वहां द्वेष होता है। तो वास्तविकता ये बताई गई है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान के पीछे पड़ना है, उनकी सारी शक्ति उनकी सेवा में लगानी है, जानकारी की भी सेवा में लगानी है, उनकी वाचा की सेवा में भी लगानी है, और अपने हाथों से भी सेवा करनी है, तीनों द्वारा मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा होनी चाहिए भगवत प्राप्ति में। और एक करे दूसरी ना करे वो ठीक नहीं। तो ये आश्रम यानी कि डिसिप्लिन जहां अनुशासित होना होता है, डिसिप्लिन तब आश्रम बनता है। ये दुष्ट भी आश्रम बना के बैठा है लेकिन भगवान की प्रति वाला नहीं, वैसे उसके आश्रम को सब कुछ खा गया, उसके शरीर को भी खा गया, चीटे इत्यादि जो दिमक लगी थी ना वो सब सारा शरीर को खा गई, सिर्फ उसने अपने प्राण अपनी मज्जा में रखा था, हड्डियों में जो मज्जा आती है ना उसमें बचा रखा था, क्योंकि सबसे अंतर्गत भाग है। क्या इसका मतलब ये कि हिरण्यकशिपु का हृदय भी खा गई ये चीटियां? हो सकता है, क्यों नहीं, नहीं तो ये दुष्ट के हृदय में भगवान चले ही गए थे, पता है। हिरण्यकशिपु नृसिंह भगवान ने जब मारा था किस ढंग से मारा था, पेट फाड़ा, उसकी अंतराल गले में हाथ के रूप में लटकाई, सही, बाद में इतना क्रोध आया, मार के बाद भी इतना क्रोध आया कि उनके पेट में हाथ डालकर हृदय तक पहुंचे और तोड़ा और जमीन पर फेंका, क्योंकि उसमें परमात्मा का वास ही नहीं था। जब परमात्मा ही कमरे में बैठ गए थे,
सही ना, खंभे पे बैठ गए थे, परमात्मा निकल गई। ऐसे दुष्ट भगवान अनादर करते हैं, इन लोगों पर अनादर करते हैं, तिरस्कार, निकलो जल्दी, ऐसे मार देते हैं। तो भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है, फिर भी इतनी दुष्टता बताना ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है। या भगवान के प्रति छोटी सी भी दुष्टता रखे तो भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। छोटी सी, सबसे छोटी सी अलगता जो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं है वो क्या है? ईगो, अहंकार। जब मैं आता हूं और मैं पिघलता नहीं तब भगवत प्राप्ति नहीं। चाहे हम कितने भी भगवान की भक्ति में तादात्म्यता रखें, सब बातें जाने, और भगवान के साथ हमें मौका भी मिले कि कुछ व्यवहार करें, लेकिन भगवान की जो वास्तविकता है कि यदि थोड़ा सा ही मैं का अहंकार रह जाए तो भगवान तुरंत अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा ऐसा लाभ कभी कभी मिलता सभी, लेकिन जब मैं आ जाता हूं तो वो वहां चले जाते हैं वहां से। गोपियों को भी हुआ था ना थोड़ा अहंकार, वो भगवान मेरी अकेले की साथ ही नृत्य कर रहे हैं। अरे तो ना समझे, भगवान अपना सर्वव्यापी विस्तार करते हैं, हर एक गोपियों के साथ अपना विस्तार करके जब रासलीला में नाचते थे व्यक्तिगत रूप से, तब गोपियों को ऐसा अहंकार आया कि मेरे अकेले की ही साथ, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मैं कितनी भगवान को आकर्षित, मेरी भक्ति तो देखो कि भगवान मेरे अकेले के साथ छू मंत्र हो गए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ऐसी डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन में हमें आना चाहिए कि जहां किसी भी चीज का लोप न हो जो भगवान की विशुद्ध भक्ति में हमें कोई खलेल करे। आजकल वो ऋत्विकवादियों का फिर से बवंडर चल रहा है। ऋत्विकवादियों कहते कि नहीं, सिर्फ प्रभुपाद ही और कुछ नहीं, हमें आगे पहली दीक्षा हमारे उससे हुई, दूसरी इससे हुई, और मारो गोली सबको, एक प्रभुपाद को बोलो, यूं कह रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद जी की सिस्टम बहुत कड़ी है। नहीं तो मंत्रों की सफलता भी संप्रदाय से जुड़े बिना होती नहीं, तो उसका क्या? जो मंत्र देता है अनुशासित होना चाहता है तो मंत्र दीक्षा तो संप्रदाय में ही लेनी होती है, और संप्रदाय अस्खलित गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही तो जाहिर होता है। अनब्रोकन चेन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन उसे कहते हैं। श्री प्रभुपाद ने दी है ना सारी गुरु शिष्य परंपरा की लिस्ट दी है, उसमें कहीं कोई टूटा नहीं। किसमें टूटना चाहिए? भगवत प्राप्ति का जो संकल्प हमें भगवान के द्वारा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा के द्वारा, व्यास देव को, नारद, नारद से व्यास देव, व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी, एवं परंपरा प्राप्तम इमं, तो परंपरा प्राप्तम होना चाहिए। जब परंपरा ही हम अटका देते हैं, रख देते हैं, चलो यहां से आगे नहीं, और कोई देखने वाला नहीं, या कोई है ही नहीं, हमें तो अपनी नजर, यानी कि जो देख ऐसा देखता है कि प्रभुपाद के बाद में कोई है ही नहीं, यानी कि खुद है उसका क्या? वो भी नहीं, जो नहीं है तो मरा हुआ है, यानी कि परंपरा टूट गई, तू भी टूट गए, तो न तो बोलने का अधिकार है, न तो पुरवार करने का अधिकार, कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, तो ऐसा बकवास करने की आवश्यकता क्या है? यह ऋत्विक सिस्टम ऐसी है। ओ प्रभुपाद जी के अलावा कुछ है ही, चलो ठीक है, लेकिन तू क्यों नहीं? यदि वो खुद नहीं है तो दूसरों की क्यों चिंता करता है? प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे एक एक शिष्य और मेरे शिष्य हर एक गुरु बने, बनो ना, लेकिन बनने की आवश्यकता है तो कोशिश करो, साहस लेना पड़ेगा, जोखम, बिजनेस करना है ना तो रिस्क लेनी पड़ती है, तो रिस्क लेने के लिए कोई तैयार नहीं, जो रिस्क लेता है तो वो सब कुछ कर सकता है, पर देखो गिरे तो ठीक है, वेल डन करके आ जाएंगे, क्रिकेट खेलते हैं, कोई बॉल आउट हो जाता है, कोई कैच आउट हो जाता है, लेकिन आखिर तो टीम जीतनी चाहिए, तो परंपरा जीतती है, परंपरा टीम है, तो टीम शुड विन, इंडिविजुअल मे नॉट विन, टीम शुड विन, तो ये वास्तविकता डिसिप्लिन में होती है जो आश्रम द्वारा प्राप्त होती है, हमें हर बार आश्रम बनाने के लिए ही मौका मिलता है, सारी अपनी वैदिक सिस्टम में आश्रम की महत्ता इसीलिए दी है कि जहां श्रम नहीं, हम लोग गधे नहीं कि श्रम करा करें, श्रम करने के लिए मंदिर में आना है क्या, नहीं, आश्रम स्थापित करने आना, ये आश्रम हम घर में ले जाएंगे, घर में गृहस्थ आश्रम स्थापित करेंगे, नहीं तो गृह निधि बन जाएंगे, बहुत सीधा साधा है, आश्रम बनाना है, आश्रम यानी कि कोई झोपड़ी बनाना है उसे आश्रम कहते हैं, ना ना, आश्रम यानी एक बात सक्षम बिना टूटी हुई भगवान के साथ जुड़ान कराने वाली प्रथा या सिस्टम कहते हैं, सिस्टम उसे संप्रदाय विहीनाते मंत्राते निष्फलानता, मंत्र की सफलता तो संप्रदाय में जुड़ने से ही स्थापित होती है, ये संप्रदाय कोई संकुचित बाड़ा नहीं है, हाँ ये मायावादी लोग हमें संकुचित कह सकते हैं, संकुचित यानी जिसका मन कुंठित हो गया है, यानी कि जिसकी विशाल बुद्धि नहीं उसे संकुचित कहते हैं, लेकिन मायावादियों का हृदय संकुचित है, बुद्धि विशाल होगी उसे फायदा क्या, जहां भगवान विराजमान है उसे ही दबोचते हैं ना, जब हृदय संकुचित होता है तो बुद्धि विशाल होने का कोई फायदा नहीं, अयम नीच परो व्यक्ति लघुनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्बकम्, उदार चरित्र भक्तों का होता है, 26 गुण दिव्य गुण होते हैं वो भक्तों के चरित्र में खिलते हैं, जब नहीं खिलते हैं तो समझना कि गड़बड़ घोटाला है, सही ना, तो यहाँ राधानाथ स्वामी ने बढ़िया ढंग से आश्रम बनाया है, उसका पूरे पूरा फायदा उठाना चाहिए, तो ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए तैयार है, लेकिन वो राह देखते थे कि ये कब मूर्ख अपनी तपस्या बंद करेगा, उसकी परिपक्वता आ गई है, क्योंकि जब खोपड़ी में से ब्रह्म ज्ञान की तेज किरण निकलनी चाहिए, उसके खोपड़ी में से अग्नि निकल रही है, कैसा आश्रम जो हर एक सारे संसार को जलाने लगी है, ऐसी अग्नि निकलती है, यानी कि ज्ञान का अभाव है, तपस्या का फल मिल रहा है उसे, तो सारी दुनिया को जला रहा है, सबको पीड़ित कर रहा है, ऐसी तपस्या देखो, और वो भी उसने अपने आश्रम में की, वो आश्रम है नहीं, इसीलिए लिखा है कि ये सब वो जहां तप करता था वहां गए, जहां तप करना तो पवित्र होने की बात है, ऐसे तप से क्या फायदा जो मन भी पवित्र नहीं होता, लेकिन ये असुर है ना, असुर के दिमाग में तो सही पहले हृदय में ही भगवान के साथ ईर्ष्या होती है, जब पहले हृदय में होता है बाद में खोपड़ी में आता है बाद में मन में आता है, बुद्धि में और बाद में मन में। भगवान कैसे प्रकट हुए, कैसे प्रकट होते हैं? जब जीव पूरी ढंग से विशुद्ध हो जाता है तब उसके हृदय में प्रकट होते हैं, जैसे वसुदेव के हृदय में पहले प्रकट हुए। वसुदेव ने देवकी को दीक्षित किया, भगवान को उसके हृदय में स्थापित किया, तब भगवान ने देवकी के शरीर में आधार लिया, उसे पहले नहीं। भगवान सबसे पहले वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए हैं ऐसा श्रीमद् भागवत के हृदय में से वो कहीं भी शरीर में, लेकिन न तो प्रसूति के द्वारा पैदा होते हैं न कुछ नहीं। ये सब दिव्यता का परिचय भगवान के दिव्य ज्ञान द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए दिव्य ज्ञान की स्पूर्णा पहले हृदय में होती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो चक्षुदान दिलो जाए, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान। तो चक्षुदान और दिव्य ज्ञान ये सब क्या चीज है? चक्षु यानी आंख, आंख खोलना, लेकिन ये चक्षु भी चर्म चक्षु खोलने की बात नहीं, ज्ञान चक्षु खोलने की बात है। शास्त्र चक्षु द्वारा ज्ञान चक्षु खुलते हैं, ज्ञान चक्षु द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि भगवान का विशुद्ध सत्व स्वरूप है और हमारा स्थूल भौतिक स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप भगवान का अंश होने के लिए दिव्य होना चाहिए, लेकिन ये तो स्थूल शरीर में हम अपने आप को नहीं समझ पाते, अंदर क्या चल रहा वो नहीं समझ पाते, तो आत्मा की क्या अवस्था होगी वो कैसे समझ पाते नहीं? तो जैसे भगवान का विशुद्ध स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह कहलाता है, तो उसका कण आत्मा भी सच्चिदानंद तो होनी चाहिए, लेकिन ये स्थूल शरीर में हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए पहले शास्त्र चक्षु द्वारा दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु और दिव्य चक्षु द्वारा दिव्य ज्ञान। भगवान का भौतिक रूप देखने के लिए भी दिव्य चक्षु चाहिए था, क्योंकि भौतिकता की पहचान नहीं होती। और 11वें अध्याय में भगवान ने कहा कि मेरा विराट रूप जो भौतिक रूप है वो तुझे ये चमड़ी की आंखों से तो नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, यानी कि शास्त्र चक्षु द्वारा दिव्यता का परिचय भगवान कराते हैं, उसमें विश्व रूप देख सकता है, विश्व रूप देख सकता। तो विश्व रूप देखने के बाद भी अर्जुन को जब अपनी आत्मा के साथ ये स्वरूप का कोई तालमेल नहीं देखा, संबंध नहीं बांध सका, वो घबराने लगा, ये तो काल रूप पैदा हो गए, सबको सफाचट करने वाले भगवान, इनके साथ कैसे संबंध रख सकते हैं? सहस्त्र मूर्धा सहस्त्र बाहु सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों मत्थे हजारों हाथे हजारों पांव, ये ऐसा कैसा स्वरूप है? सारे देवताओं उसमें समाये, सारी पृथ्वी सारे लोग और सबको हड़प करने वाले, और उसके मुख में से जो अग्नि जल रही है, भगवान के मुख से भी अग्नि जल रही है, क्योंकि अग्नि देवता थे ना, इनकी शक्ति का, और हिरण्यकशिपु वो अपनी खोपड़ी से अग्नि निकालता है, ये देखो। तो ये दोनों में अंतर है, भगवान सर्वनाशक है, हिरण्यकशिपु कोई किसी प्रकार का नाश करने में समर्थ नहीं है, घबरा सकता है देवताओं को, लेकिन देवताओं भी अकलमंद है, कोई उपाय ढूंढते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी आप सर्वश्रेष्ठ हो, आप ही उसका निकाल करिए। तो ब्रह्मा जी तुरंत राह देखते थे कि चलो टाइम हो गया बच, तो सब हाजिर होते हैं। ये ऋषि मुनिया भी देखते रहते हैं, उनके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं है। ब्रह्मा जी भी आकाश में सही बोल रहे हैं, हे भैया क्या हो रहा है, देख तो सही। लेकिन उसको भी शुद्ध बुद्ध कहाँ थी, वो तो इतना अंधा हो गया था कि सारे विश्व को जला रहा है। तब ब्रह्मा जी ने छिड़की मूल पानी छिड़का, थोड़ा कमंडलों में से पानी लेकर छिड़कते हैं, यानी कि ब्रह्मा जी के पास इतनी पानी की बूंद से भी उसकी अग्नि शांत हो जाती है। देखो लेकिन उसे प्रसन्न तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से अग्नि जलाएगा। तो ब्रह्मा जी भी चालाक है, उसको अनजाने में भी बहुत सारी चीज दे देते हैं। तो लेकिन कहने का मतलब है कि देवता भी भगवान की प्रीति के लिए ही काम करते, वो द्वेषी नहीं। दैव असुरी संपत्ति की बातें भगवान ने बताई है भगवद गीता में। आप देखोगे कि वो तो पद्म पुराण में भी कहा है कि विष्णु भक्त भवे दैव आसुर्य च विपर्यय, जो विष्णु का भक्त है वो देवता बन सकता है, जो विष्णु भक्त नहीं है वो सब आसुरी, सब आसुरी। विष्णु भक्त नहीं है वो सब असुरी प्रकृति के। तो आसुर्य तक विपर्य वो पद्म पुराण था, दैवासुर संपद विभाग, ये जो संपत्ति, ये संपत्ति हमें प्राप्त हुई है अपनी इच्छा के अनुसार, भगवान ने दे दी। यदि हम सीधी इच्छा करते तो भगवान सीधा देते, लेकिन हम उल्टी इच्छा करते हैं तो भगवान उल्टा ही देते हैं। जो चाहे हमें मिल सकता है भगवान की बात, और देते ही रहते, यानी कि हम जो हैं वो अपनी इच्छा से हमें प्राप्त हुआ। कोई कहेगा कि हम बहुत गरीब हैं, हम अपनी इच्छा से गरीब नहीं हुए, तो उसका जवाब क्या होगा? तेरे पास होते हुए भी यदि तूने गरीब जैसा दिखावा किया होगा तो गरीब ही हुआ है। अगले भाव में वो बड़ा धनवान था लेकिन कंजूस का चाचा था, इसीलिए दूसरे जन्म में हुआ गरीब। भगवान की संपत्ति थी तो उसे चाहिए थी तो दे दी थी, जब दुरुपयोग किया तो बाद में क्यों देंगे, इसीलिए उसे गरीब है। वो कर्म का लेखा जोखा में आता है। तो आसुरी भगवान के विरुद्ध इच्छा करने वाले सब असुर कह रहा, हमारे में कितने असुर पड़े जरा नाप तोल किया है? ये असुरों को निकालने के लिए कि हमें तो नृसिंह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रहलाद महाराज करते हैं तो हम क्यों ना करें। एक विशुद्ध भक्त भी कहता है, और उसकी लीडरशिप में हरियश्व लोक में जो जो जम्बूद्वीप में हरियश्व लोक हैं उसके सारे निवासियों इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते नृसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रद्रंश क्रमाशय रंदय रंदय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयम आत्मनि भूयिष्ठामो क्षौम। हे नृसिंहदेव, आपके नाखून और दांत इतने विकराल हैं, इतने ताकतवर हैं, तो कृपया करके मेरे ही अंदर जो आसुरी की इच्छाएं हैं इनको इनको दूर करो, प्लीज हेल्प। भक्त तो अपनी इच्छा ऐसी आसुर की इच्छा को दूर करने के लिए भगवान की सहायता मांगता है, तो करना, क्योंकि ये भवसागर बहुत दुष्कर है, बहुत दुष्कर है। तो इसमें हमें अभय प्रदान करना चाहिए। यदि हम भयभीत होकर संसार करना चाहेंगे तो डूबे ही समझो, गिरे ही समझो। लेकिन अभय निर्भयता देने के लिए पहले तो ये दुष्टों को खत्म करो, तब हम निर्भय बनकर संसार में हम चुनौती दे सकते हैं। संसार में चुनौती देनी पड़ती है, जो कमजोर है तो गया काम से। आत्मबल इसी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ही आसुरी इच्छाओं को दूर करने के लिए जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है। जैसे कि सुरक्षा कवच मंत्र इत्यादि, नारायण कवच, नृसिंह कवच इत्यादि पढ़ने वाले को क्या चाहिए, क्या मिलता है? सुरक्षा, सुरक्षा में भय चला जाता है, निकल जाता है, तब सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी कैसे आती है? हाउ डू यू गेट सिक्योरिटी? व्हेन देयर इज नो प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम अंदर होते हैं अपने, तो उसे निकालो तो प्रॉब्लम निकल जाएंगे, तो सुरक्षा मिल जाएगी। बाहर के प्रॉब्लम खड़े करने वाले हम हैं, बाहर जो प्रॉब्लम करते हैं हम ही तो करते हैं। जब हमारे में अंदर ही प्रॉब्लम नहीं तो बाहर प्रॉब्लम कैसे होंगे? इसलिए नृसिंह भगवान को भक्त यही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये संसार बहुत कठिन है, लेकिन जब तक निर्भय नहीं बनेंगे तब तक हम कैसे तर पाएंगे? नृसिंह भगवान आप मदद करिए। इस ढंग से निर्भयता प्राप्त हो सकती है। और देवता सीधी प्रार्थना नहीं करते, नृसिंह भगवान वो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं थोड़ी। देवता लोग को पॉलिटिक्स आती है, वो अपने लीडर के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उसका निकाल करो, ये हमें सता रहा है, आप ही सर्वश्रेष्ठ हो। तो कह दिया कि हमने सुना है, देखो हमने सुना है क्या कि ये आपकी पोजीशन लेना चाहता है, ऐसी तपस्या करके। हमने क्या सुना है कि हिरण्यकशिपु इतनी सारी तपस्या करके आपकी गद्दी ले लेना चाहता है, आपकी कुर्सी, किस्सा कुर्सी का ले लेना चाहते हैं, इसलिए आप ही कोई उपाय करो। हमारी तो कुर्सी गई लेकिन आपकी भी जा रही है, सही? तो आप कृपा करके उसका कोई निकाल करिए। तो ब्रह्मा जी, हाँ ठीक है चलो, देखो पॉलिटिक्स कितनी कहाँ कहाँ पहुंचती है, स्वर्ग लोक, लेकिन गोलोक वृंदावन में नहीं, कोई पॉलिटिक्स है ना। तो इसी ढंग से ये सारा किस्सा हो रहा है और ब्रह्मा जी भृगु इत्यादि के साथ आ रहे हैं। देखो इसमें भी वरदान में भी पॉलिटिक्स चल रहा है। हिरण्यकशिपु को इतना चालाक है, वो भी पॉलिटिशियन है, अमर बनना चाहता है, तो आर्ग्यूमेंट होती है। ब्रह्मा की मैं कहां अमर हूं जो मैं तुझे अमरता प्राप्त कर सकूं? हाँ तो ठीक है, तो ऐसे करो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसे ढंग से ना मरो, ऐसे ढंग से, ये सब पॉलिटिक्स। जहां तक भौतिक शरीर और भौतिकवादी जीवन के पीछे हम पड़े हैं तो तब तक पॉलिटिक्स रहेगी। देवताओं भी इसमें ही पड़े हैं, बड़े पैमाने पर पड़े हैं। सही ना? आपको पता होगा कि वो वृत्रासुर को मारने के लिए भी पॉलिटिक्स खेलनी पड़ी थी, सही? वो भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा जाओ ये भक्त है दधीचि मुनि, उसकी हड्डी ले आना और हड्डी से वज्र बनाए तब ही मरेंगे। तो उसके लिए भी पॉलिटिक्स देवताओं को खेलनी पड़ी। भक्त कोई और ही चीज है, आत्मा भक्त होती है भगवान की, उसका विशुद्ध स्वरूप में ही। यानी कि हमें वही कोशिश करनी चाहिए कि जो सनातन रूप से सनातन अवस्था में हम हमेशा भगवान की सेवा करते रहे। तो ये देवताओं का सारा माहौल जैसा यहाँ भी है वहां भी है, इस भौतिक दुनिया में है वैसा स्वर्गलोक में भी ऐसा ही माहौल है। बहुबंधन कटने की कोई बात नहीं है वहां, लेकिन हाँ भगवान की इच्छा के अनुसार थोड़ा काम करना, ये सारी सृष्टि का संचालन करना, ऐसे दुष्ट आते हैं तो उनके निकाल करना, लेकिन फंस जाते हैं। देखो फंसेंगे ही फंसेंगे। ये हिरण्यकशिपु जब अमरता प्राप्त करता है तो क्या देवताओं की परेशानी कम हुई है क्या? नहीं हुई ना, उल्टी बड़ी ना। देवताओं की परेशानी ये वरदान देते हुए बड़ी या कम हुई है? बड़ी है। तो उसका उपाय कौन करता है? भक्त करता है, भक्त हृदय नारद मुनि करते हैं। यानी पॉलिटिक्स में कोई उद्धार नहीं है, लेकिन भक्ति में उद्धार है। पॉलिटिक्स में किसी का कोई कल्याण नहीं, चाहे कितनी बाजी खेलो। ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी कोई जबरदस्ती से वरदान मांग लेता है, हिरण्यकशिपु जबरदस्ती से मांगता है, पता नहीं ये जबरदस्ती है ना देवताओं पर। तो ठीक है, जो जबरदस्ती करते हैं तो उसका भी जवाब भगवान के पास तो है ही, लेकिन देवताओं आश्वस्त नहीं है। वो लोग आश्वस्त नहीं है इन पर, वो तो भक्त ही आश्वस्त होता है। देखो प्रहलाद महाराज कैसे आश्वस्त रहते हैं। वो आश्वस्तता यानी कि भक्ति के वर्धक पांच नियम ना छह नियम में आश्वस्तता, आश्वस्तता मीन्स गारंटी। हमें ऐसी गारंटी की महसूस होनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जब निर्भयता होती है तो ये आश्वस्तता नहीं होती, निर्भय होने की आवश्यकता है। नारायणो परो व्यक्ता न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापेषु नरकेषु तुल्यार्थ एव दर्शनम्। जब भगवान का भक्त है वो किसी से डरता नहीं, कहीं से डरता नहीं, कोई भी परिस्थिति से डरता नहीं, चाहे स्वर्ग में भेजो नरक में भेजो सब तुल्य होता है उसके लिए। कोई डरता नहीं, जब डरते हैं तो गए काम से। प्रभुपाद जी कितने निडर थे, इन्होंने संप्रदाय की जो प्रतिष्ठा है, संप्रदाय की प्रतिष्ठा में उन्होंने कितनी सुरक्षा दे रखी थी। आश्रम डिसिप्लिन, क्योंकि उन्होंने जैसे डिसिप्लिन ग्रहण की है वैसे ही डिसिप्लिन देने का प्रयत्न किया है। बाद में कौन कितनी डिसिप्लिन का पालन करता है, राम जाने।
राम भरोसे हिंदू होटल जैसी चलती है। संस्था में सब में ऐसा ही ये प्रकृति का प्रभाव, खास करके कली का प्रभाव घुसता है, तब हम उल्टी पुल्टी देखते रहते हैं। लेकिन भक्ति ही, विशुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है जो सारी ये कमियों को दूर कर सकता है, और कुछ नहीं। तो भक्ति में भगवान सुरक्षा देंगे ही देंगे, इतनी आश्वस्तता बनाए रखना हरेक भक्त की फर्ज है। जो कमजोर है यानी कि भगवान पर आश्वस्तता नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, उसमें विश्वास ही नहीं है, यानी कि भक्ति का नाप तोल वहां से शुरू हो जाता है, भगवान हमारी कितनी रक्षा करेंगे, ओ इतनी करेंगे तो इतना ही देंगे, तो भगवान के तो इतना ही करना चाहता है तो मैं इतना ही दूंगा। ये यथा वाम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव विजाम्यहम्। हाँ सही, तो भगवान रोकड़ा हिसाब रखते हैं, रोकड़ा उधार नहीं चलाते किसी का, उधार नहीं चलाते। तो इस ढंग से हम देखेंगे कि ये हिरण्यकशिपु की भी क्या हालत होती है। पहले तो आग भटकाने लगा है, बाद में धुआं निकलेगा। ज्यादातर क्या होता है कि धुआं पहले निकलता है, बाद में आग लगती है, पहले ये आग लगा चुका है ना? सारे लोगों को परेशान कर, अब एक छोटा सा बालक उसका बेटा बनकर आएगा, भक्त बनकर आएगा, हाँ? उसके प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे, लेकिन धुआं ही निकलता, आग निकलती नहीं। इतना गुस्सा होता है, क्या क्या तमाशा बताता है, उसे यहां पछाड़ो, हाथी के पांव पे दबाओ, ये करो ये करो, सब धुआं ही धुआं। और ये क्रोधित बनता है, वो आग खुद को जलाने लगती है, और नरसिंह भगवान ने सब निकाल दिया। तो ये हालत है दुनिया को परेशान करने के लिए, देखो उसके खोपड़ी में से आग लग रही है, और एक बेटे को भी मार नहीं सकता, बेटे को भी मार नहीं सकता, ये छोटा बालक है उसको भी परेशान कर सकता। तो भक्ति की ताकत क्या है वो तो देखना। पॉलिटिक्स की ताकत देख ली, जलाएगी, लेकिन अंत में तो धुआं निकलेगा, आग बंद हो जाएगी। सब कहने का मतलब है कि ये सब हमें, हम किस ढंग की डिसिप्लिन लेते हैं, आश्रम में रहते हैं जहां कोई श्रम नहीं है, भगवान की प्रीति करने में क्या कोई प्रेम करने में श्रम पर पसीना पड़ता है क्या? कोई प्रेम करता है तो क्या पसीना पड़ता है? पसीना पड़ने लगना शुरू हो जाता है तो समझना ये प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ और ही है। तो यहां इस सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज के चरित्र की सर्वोच्चता, इतनी ताकत पर चुनौती देना, सारी दुनिया की ताकत पर चुनौती देने के बराबर बताया गया। तो भक्ति में क्या ताकत है उसका परिचय करना बहुत आवश्यक है। हर एक भक्त की जिम्मेदारी है कि जैसे हमें डिसिप्लिन में हमें भक्ति सीखने मिलती है, इस ढंग की डिसिप्लिन हमें बहुत सावधानी पूर्वक ग्रहण कर देनी चाहिए, और उसको जरा ठीक ढंग से जांच पड़ताल करनी चाहिए, अकलमंदी रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
किसी को कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण भाई, सर बहुत अच्छे क्लास दिए, बहुत धन्यवाद आपको। आपने एक बात बताया जैसे चक्षुजान दिलोज है, बहुत सुंदर बताया चक्षुजान दिलोज है। तो एक्चुअली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कभी कभी हमको ज़्यादा भक्तों का संग नहीं रहता है, तो इस प्रोसेस ऐसा लगता है कि कुछ थोड़ा फेथ कम हो जाता है, तो
बैटरी चार्ज करनी चाहिए। बैटरी चार्ज करनी चाहिए, कीर्तन करो, वाचो करो, यहाँ तो काफी करते हैं। हम न नाचते फिर भी नाचने लगते हैं, ऐसी कुछ होती है ये। जैसे किसी ने स्प्रिंग बोर्ड नीचे रखा हो। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्व कर्म प्रवर्तना, ये तो भक्ति का विकास इस ढंग से ही होता है। धैर्य रखना चाहिए, भाई का सत्संग तो मिलता ही है, क्यों नहीं मिलता? यदि नहीं मिलता है तो दो आपका सत्संग दूसरों को दो, सही ना? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो सत्संग नहीं देख सकता, लेकिन इच्छा नहीं है, क्या कर? प्रभुपाद जी ने एक बार किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे क्या गुरु करने की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी कहते, बाइबल जिसने लिखी हुई तो तेरा गुरु है, उसकी मति के अनुसार तो तू समझ रहा है, तो कभी भी ऐसी अनावश्यकता पैदा होती ही नहीं। गुरु तो होते ही है, सत्संग तो होता ही है, लेकिन यदि हैंकर करते हैं, बहुत अपेक्षा रखते हैं, तो घर पे नहीं है तो बाहर जाके लेना चाहिए। कहां जाओगे? तीर्थ धाम में जाओ, नहीं तो बुलाओ पकड़ के, सबको बुलाओ। आवश्यकता तो है ही, लेकिन यदि नहीं मिलता तो आपको देना पड़ेगा। कभी भी ऐसा नहीं कि अनावश्यक है या मिलता नहीं है, जहां मिलता नहीं है तो दो। जिसको ये महसूस होता है कि हमें तो मिलता ही नहीं, तो आप दे दो, आपके पास जितना है वो दे दो, सत्संग तो देना ही चाहिए। जब जब ऐसा होता है तो प्रभुपाद जी की किताबें तो सत्संग देती हैं, कभी भी अनावश्यकता का प्रश्न ही नहीं, होता ही है वो तो। और प्रश्न?
हरे कृष्ण, आपने बोला महाराज पॉलिटिक्स तो चलता रहता है,
आज की थोड़ी है,
हमारे आज के समय बहुत सारे पॉलिटिक्स चलता रहता है,
तो कुछ नहीं है आजकल जो चल रही है, वो तो कुछ नहीं है।
तो ऐसा भक्तों के साथ हम कैसे करना चाहते हैं? तो ऐसा
नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पॉलिटिक को कोई स्थान नहीं होता, आश्रम में कोई स्थान नहीं होता। प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ पॉलिटिक्स वहां कृष्ण भावना नहीं। सताम प्रसंगा मम वीर्य समृत, सत्संग में तो भगवान का बल प्राप्त होता है, भगवान की प्रतीति होनी चाहिए। सत सनातन सत्य स्वयं भगवान, उसकी प्रतीति होनी चाहिए। I'm hungry. It's good that I didn't have much association, so I cannot speak much. हमारे गुरु भाई को है, हम इतने प्रभुपाद जी के साथ सीधी बात करने में भी हमारा कोई सौभाग्य नहीं था। प्रभुपाद जी के दर्शन किए, इनको सुना है, हम जब जब गए तब लेट पड़े। I missed most of the time, then अभी तो थे ना न्यूयॉर्क में डाक मेंबर की मीटिंग के बाद, they are simply giving empathic listening, तब थोड़ा काम कर रहे हैं। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इतना है ऐसा सत्संग, और हमें सिर्फ पुरवार करना है, इसीलिए पीछे पड़े हैं, तो हमारी हालत तो कहीं लटकती होगी। स्ट्रगल प्रभुपाद जी की महत्ता कही, विशुद्ध चरित्र का क्षण मात्र संग भी सर्व सिद्धि दे सकता है, नहीं तो कई इतने बड़भागी भक्त लोग हैं जिन्होंने कितना प्रभुपाद जी के साथ सहवास किया है, फिर भी जितना उसकी सेवा प्रभुपाद जी को उन्होंने दी, प्रभुपाद जी बहुत उन पर कृपा रखते थे और कहना कि ना ही वो गुरु, यानी कि इतना सहवास होते भी यदि कोई फायदा नहीं उठा रहा, उसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी के सत्संग कोई कमजोरियां, जो लोग ने अपनी स्मृति में लिखा है तो सत्य है, वो प्रभुपाद जी के इतने ऋणी है, वो स्वयं भी जाहिर करते कि हम जो जितनी सेवा करना चाहते हैं यदि कर ना पाए प्रभुपाद जी, फिर भी प्रभुपाद जी के विशुद्ध चरित्र की जो उनको जो अनुभूति हुई है, उनको जो प्रतीति हुई है, वो सत्य है, उसमें दो राय नहीं। प्रभुपाद जी कितने हम्बल थे, क्योंकि इनका संग हमें, क्षण का संग भी हमें भक्त बना सकता है, या भक्त की कैटेगरी में ला सकता है, या भक्त बनने का मौका दे सकता है, तो वो भी तो स्वयं कहते हैं कि नहीं, तो भगवान का नाम की महत्ता है, हमारे में कुछ है, हमें विश्वास है, लेकिन हमारे में कुछ है। तो इस ढंग से विशुद्ध चरित्र द्वारा भगवान की शक्ति का ही तो परिचय होता है, एक विशुद्ध माध्यम, पारदर्शक माध्यम, जब विशुद्ध गुरु बोनाफाइड गुरु आचार्य के रूप में आते हैं तो किनको प्रसारित करते हैं, भगवान को, सही, भगवान प्रसारित होते हैं, तो वो स्वयं भगवान नहीं है, वो स्वयं पारदर्शक माध्यम है जिसमें भगवान प्रसारित होते हैं। तो ये अपनी अनुभूति है, और यत्किंचित अनुभूति से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, इसी भावना है। ये अनुभूति आपने कहा उसी ढंग से सत्संग द्वारा ही प्राप्त रहनी चाहिए, बैटरी चार्ज करने में जो जो जूस चाहिए, जो हाँ चार्ज चाहिए हमें, तो ये चार्ज वहां से मिलता है सत्संग द्वारा, सत्संग का महत्व ही है ऐसा। और कोई प्रश्न? ज्यादातर कई भक्तों का समय प्रभुपाद जी के एब्सेंस में ही गया, विरह में ही गया है। आप देखोगे तो इतने सारे भक्त बहुत अंतर्गत नहीं थे, सभी सेवा करते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की उपस्थिति ही, चाहे दुनिया के दूसरे कोने में हो, फिर भी बहुत ताकतवर थी भक्तों के पक्ष। जो जब दीक्षित हैं उनको यही महसूस हो। और आप सभी का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपका उत्साह हमें उत्साहित करता। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की
जय।